तो बाबा के अमूल्य रतन आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी, आपका ये परम सौभाग्य रहा है कि संस्था के संस्थापक हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिनके अंग संग आप स्वयं रहे हैं, आपके पास दिव्य और अलौकिक अनुभव प्राप्त है। साथ में राजयुग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन मीडिया विंग की टोटल जिम्मेदारी आप स्वयं ही संभालते हैं और हम सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मधुबन बेहद यज्ञ के द्वारा जो पूरा ही देश विदेश के अंदर मीडिया के द्वारा प्यारे बाबा का जो संदेश पहुंचाने का कार्य है, बाबा को प्रत्यक्ष करने का जो कार्य है और उसके जो मीडिया के द्वारा बाबा का संदेश पूरे विश्व में पहुंच रहा है मीडिया थ्रू, उसकी टोटल जिम्मेदारी आप हमारे करुणा भाई जी संभालते हैं। जोरदार ताली बजा करके इस बात पर हमें आज सुनाते हुए इस बात की बड़ी खुशी हो रही है। और साथ ही साथ में एक और खुशी की बात है कि आप घर बैठे जो पीस ऑफ माइंड के द्वारा मधुबन के टोटल प्रोग्राम जो भी चलते हैं घर बैठे आप देखते हो, प्यारे बाबा बाप दादा का आप जो प्रोग्राम देखते हो उसका श्रेय भी हमारे आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी को जा रहा है। और इसी मीडिया विंग के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं और साथ में देश विदेश में आप परिक्रमा लगा करके अनेक आत्माओं को स्वयं जाकर के भी बाबा का मैसेज पहुंचाते हैं, अनेक आत्माओं की दुआएं आपके पास प्राप्त हैं। आपकी इस मीडिया विंग के बारे में जितनी भी सेवाओं की महिमा सुनाई इतनी कम है, उसके आप सागर हैं। तो ऐसे बाबा के हमारे अमूल्य रतन आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी, इनके स्वमुख से हम ज्ञान रतन से अपनी झोली को भरेंगे। आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी।
ओम शांति। मुझे मालूम है हम सभी 3:30 बजे उठे हैं, कोई कोई तो उससे पहले भी उठे हैं और सारा समय तपस्या में भी है और कई क्लासेस भी कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा अपनी जीवन की कुछ इस समय पर, जिसको कहते हैं वर्तमान पुरुषार्थ और सेवा का स्वरूप, हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय पर, हमारी दादियां क्या कर रहे हैं, हम मधुबन निवासी क्या सेवा कर रहे हैं, तो इन बातों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। भाषण नहीं, अनुभव है, क्योंकि हम ब्राह्मण एक दो से मिलते हैं और एक दो से जब पूछते हैं तो दुनिया में तो यही कहते हैं आजकल क्या हो रहा है। कहा जाता है जो जब दो मिलते हैं तो वो तीसरे की बात करते हैं, अपना नहीं करते हैं। परंतु हम बाबा के बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो हम क्या करते हैं वो एक दो को सुनाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं जो स्वयं पुरुषार्थ करते हैं वो तो करते ही है, परंतु दूसरों को भी अपनी पुरुषार्थ से आगे बढ़ाना। जैसे बाबा ने आज देखो पूरी संस्था को नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो बाबा ने माताएं बहनों को आगे रखते हुए आज इतने दादियों को हमको दिया वरदान में, जो ये संस्था सुचारू रूप से चल रही है। तो हम सब बच्चों को भी अपनी पुरुषार्थ से दूसरों को फायदा होता है तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो इसीलिए तो हम सभी इस समय पर वर्तमान समय में हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनियावी एक बात मुझे अच्छा लगता है, कहते हैं आज कंप्यूटर युग है, विज्ञान का युग है, तो समझते हैं कि हम बहुत कुछ दुनिया में कर सकते हैं। तो हम बाबा के बच्चे भी जब ज्ञान में आए तो इतनी जोश हमारे अंदर बाबा भर देते थे, तो बस अभी हम पूरे दुनिया को बदल देंगे, सारी दुनिया को ज्ञान देंगे। पर अब ऐसा लगता है कि हम हुशियार तो थे, जोश में तो थे, सारी दुनिया बदलने की हमारी थिंकिंग तो था, पर अब लगता है कि अपने को भी साथ साथ में बदलना जरूरी है। क्योंकि हम बच्चे सेवा में इतनी गहरी चले गए थे, कितने दिन हुए कितने रात हुए पता नहीं है, हमारे से कोई पूछे कि कब ज्ञान में आए आप, कितने साल हुआ, तो हमको कुछ ख्याल भी नहीं याद भी नहीं, क्योंकि इतनी सेवा में हम लोग व्यस्त रहे। तो इससे सिद्ध होता है बाबा ने चार सब्जेक्ट देने के बाद भी हमारी जो प्रायोरिटी रहा वो सेवा के ऊपर ही रहा। दुनिया को बदलने की, बच्चे अपनी ही तन मन धन से भारत भूमि में स्वर्ग को लाना है, एक ही बात मालूम था, इसी बात पर हमारे रात दिन की पुरुषार्थ रही। बाकी जो तीन सब्जेक्ट था उसके बारे में इतना फुर्सत नहीं मिला सोचने का भी। तो ये तीन सब्जेक्ट भी मेरे लिए ही है, और हर सब्जेक्ट का 25 मार्क ही है, ज्यादा नहीं है। तो हमारी जो पूरी जिंदगी उस 25 मार्क के पीछे ही गया, बाकी जो तीन सब्जेक्ट है 75 मार्क का वो क्या होगा, वो कौन करेंगे, वो कब करेंगे। तो क्या जब बाबा टू लेट का बोर्ड लगाने के बाद ये तीन सब्जेक्ट करना है या इससे पहले करना है। तो इसीलिए हम सोचते थे कि अभी तक तो दुनिया के लिए ही सोचते रहे, बस दुनिया को संदेश देना है, दुनिया को बाबा का प्रत्यक्ष करना है और दुनिया को परिवर्तन करनी है। पर मेरा अनुभव जैसे उन्होंने बताया, बाबा के साथ रहा, मम्मा के साथ रहा, दादी के साथ रहा, सन 1960 में मैं पहली बार मधुबन में आया हूं, तो तब से मैंने सबको देखा है। बाबा मम्मा दादियां सब अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, और अभी भी जो दादियां हमारे सामने हैं, चाहे दान की दादी देखिए चाहे गुलजार दादी देखिए, हमारे लिए है पर दिखाई देता है अंदर की वृत्ति उन लोगों का, सारा दिन बाबा ही बाबा है। दादी तो कई बार कहती है मैं गई की गई। तो बाबा हम बच्चों के लिए इन्हों को सैंपल अभी भी रखा है, उन द्वारा विश्व की सेवा करा रहा है, पर उन्होंने अंदर पुरुषार्थ एक ही कर रहे हैं कर्मातीत का। तो हम बच्चों को भी इस समय पर क्या सोचना है, अपनी सेवा हम कर्मातीत बन करके विश्व की सेवा करें, या हम विश्व का ही सेवा में मस्त रहे और कर्मातीत बनने का हम समय पर नहीं करेंगे तो क्या बाबा हमको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे। तो इसीलिए बाबा ने भी अभी पिछले कुछ मुरलियों में स्पष्ट कर दिया है कि बच्चे जो करना है सो अब करो, सेवा की भी विधि बता दी है, स्व पुरुषार्थ का भी विधि बाबा ने बता दिया है, स्पष्ट बता दिया है। हम कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं बाबा को। कभी कभी संकल्प आता है ना कि इस बार बाबा आएंगे, इस बार बाबा आएंगे, इस प्रकार की हमारे भाई बहनों का संकल्प होता है। गुलजार दादी जी ने भी कई बार कहा है बाबा को जो कुछ भी सुनाना है, जो कुछ भी सिखाना है वो बाबा ने कर दिया है, बाकी बच्चों को बाबा की आशाओं को पूर्ण करने की काम अभी भी बाकी है। हम सब मानते हैं साथ साथ में अपनी कर्मातीत स्थिति को भी करना बहुत बहुत जरूरी है। वो नहीं किया तो अंत समय में ये काम नहीं हो सकता। तो इसलिए जो आप अभी यहां आए हैं, जानकी दादी ने एक प्रश्न पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उस पर बहुत बुद्धि चली, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। शिव बाबा हमारे साथ है या हमारे पास है? फिर से बोल रहा हूं, शिव बाबा हमारे साथ है या हमारे पास है? जो कहे साथ है वो हाथ उठावे, सब पास है। तो जो कहे पास है वो हाथ उठावे। तो अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, आप किसके पास आए हो? तो बाबा के पास आए हो या बाबा के साथ आए हो? बाबा से मिलने बाबा के पास आए हो। अभी आप सभी बैठे हैं, बाबा आएंगे तो बाबा से मिलने लिए आए हैं, तो बाबा के पास आए हैं। बाकी यहां से जब आप जाएंगे साथ लेके जाएंगे। तो इसमें कुछ अंतर तो है, बाबा साथ है, बाबा के पास है। देखो कितना अच्छा लगता है, दादियां कितनी डीप विचार करते हैं, मतन करते हैं। मुझे भी जब से दादी का मुख से सुना तो मेरी बुद्धि तो चलने लग गया। तो बाबा के पास आए हैं और बाबा भी हम बच्चों से मिलने आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि सारी दुनिया के पास आ रहे हैं, नहीं, भले टीवी में देख रहे हैं, टीवी में बाबा आया है, पर बाबा हमारे पास आया है। आप इतना दूर से आए हैं तो बाबा के पास आए हैं, भले वो लोग देखेंगे टीवी में, हमसे मिलते हुए देखेंगे वो लोग। तो इसीलिए बाबा के पास इसीलिए आए हैं क्योंकि बाबा हम बच्चों को कुछ वरदान में दे रहे हैं, हमको मालूम है। एक है ज्ञान में हम सुनते हैं, मुरली में सुनते हैं, तो फिर हम उस अनुसार करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। पर जब आप यहां बैठे हैं और बाबा हमको कुछ कह रहा है, उसमें कोई मेहनत नहीं है और वरदान के रूप में मिलता है। तो पास वालों को बाबा वरदान के रूप में देते हैं। मेहनत के बिना वो जैसे हमको वरदान के रूप में मिलता है। तो जब बाबा कहे बच्चे मुस्कुराते रहना, तो अपने आप एक मुस्कुराहट बच्चों के मुख में दिखाई देता है। बाबा के हर बात वरदान के रूप में मिलता है, इसीलिए बाबा के सामने आए हैं, बाबा से मिलने आए हैं। बाकी बाबा को साथ रेखना है, बाबा को साथ लेके जाना है, तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। यहां आप भूलना भी चाहे नहीं भूल सकेंगे, बाबा का घर में बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, तो इसीलिए यहां तो बाबा आपका साथ भी है और आप बाबा के पास भी है। परंतु जब हम यहां से निकलते हैं तो दुनिया में है, दुनिया साथ है, दुनिया पास है, पर उस समय पर भी बाबा हमारे साथ रहे, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगता है। इसीलिए ही बाबा ने हम बच्चों को ये जो ट्रैफिक कंट्रोल और विशेष योग का समय, ये सब इसीलिए दिए हैं कि बाबा का साथ हमारे से छूटे नहीं। हम योग बाबा के साथ करते हैं, पास करते नहीं, बाबा के साथ करते हैं, बाबा को याद करते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को इस समय पर ये पक्का करना है, अब तो बाबा हमारे पास आए हैं, हम बाबा के पास आए हैं, पर जब हम यहां से जाएंगे तो बाबा हमारे साथ है, हम नहीं छोड़ेंगे। अभी ये न कहे बाबा अचानक कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कई बार बाबा कह चुका है बाबा हमको डराओ नहीं, अभी हम पक्के हो गए हैं, कुछ भी हो जाए हम आपके साथ है, आप हमारे साथ है। तो ये पुरुषार्थ आप देखना हो तो अभी हमारी दादियों में देख सकते हैं आप। दादियों को सिवाय बाबा और कुछ नहीं दिखाई देता है। आपको प्रूफ चाहिए तो जब गुलजार दादी जी बॉम्बे में थे और आप सबने बॉम्बे में दादी होते हुए भी टीवी में देखे, पर दादी को ख्याल नहीं आया कि मैं बॉम्बे में हूं, पर दादी समझती थी मैं यहां मधुबन में ही हूं। ऐसा अनुभव किया आप लोगों ने? दादी को सदा ही बाबा साथ, मैं कहां हूं उसकी दादियों को चिंता नहीं है, दादियों को ये मालूम है मैं बाबा के साथ हूं। हम देखते थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि देखो दादी हमारे साथ है, सिर्फ बाबा नहीं दादी भी हमारे साथ है। कितनी खुशी हुई उस समय पर, बहनों को याद दिलाना पड़ा दादी आप यहां है, यहां से बाबा की संदेश सुना रही हो। पर दादियों की देखो अवस्था, तो इसीलिए आप सभी भले अभी दुनिया में जाएंगे, आपसे बहुत सेवा कराना है बाबा को, क्योंकि अभी दादियां तो इतना जाते नहीं, तो बच्चों द्वारा ही बाबा को प्रत्यक्ष कराना है। तो पर बाबा साथ ना हो ये तो नहीं कहना है कि भाई भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं तो कहां मधुबन में सबको कहेंगे आप मधुबन जाओ तो भगवान मिलेंगे, नहीं। तो जब आप कहते हो तो भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं, तो आपका कहना और उनको अनुभव होना साथ साथ होना चाहिए। तो इसी बात के लिए ही बाबा ने दो विशेष मुरलियां चलाई है। एक मुरली कई सालों से बाबा इस बात को हमको याद दिलाते गए हैं कि बच्चे समय वो आएगा जो आपको मुख से ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। सर्कमस्टेंसेस भी ऐसा हो सकता है, तो फिर क्या करें? तो बाबा ने कहा एक शक्ति जो है वो है संकल्प शक्ति। तो संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल हो तो जो आप सोचे वो हो जाए, वो शक्ति बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। मुझे याद है प्रकाशमणि दादी जी ऐसे ही कर्मातीत नहीं हुई है, उन्होंने अपनी पूर्ण प्राप्ति की, पूर्ण स्थिति की प्रैक्टिकल दिखाया था। अचानक क्लास में एक दिन दादी जी ने कहा, क्या मीटिंग में चैलेंज, सभी हम बैठे हुए थे, भारत के सारे टीचर्स बैठे थे, ऐसा कोई जोन है, सेंटर्स है जो कहे 1,00,000 की सभा हम तैयार करेंगे, दादी आप आओ। हम सब सोच में पड़ गए क्योंकि उस समय पर 10,000 15,000 20,000 आवे तो बहुत बड़ी बात थी। पर दादी ने अचानक ये कह दिया, पूरी सभा बैठे हैं, सारे भारतवर्ष के सभी बैठे हैं, जब दादी ने ये बात कही 1,00,000 की सभा, तो आजकल आप जानते हैं इवन पॉलिटिकल इसमें भी सबके पास नहीं होती है। तो दादी उस समय पर जब भी कहा तो मुझे आप सबके सामने बताने में खुशी है, हमारी सरला दीदी उठकर कहा, दादी हम करेंगे। हमारे गुजरात के बच्चे बाबा के करेंगे। तो सचमुच सभी भारत के सारे जोन को, सभी को ये हुआ कि सचमुच कर पाएंगे, होगा। और दादी का संकल्प और आप सब की मेहनत, वो जो महामेला जो हुआ था वो तो सचमुच सारा यज्ञ की रूप को बदला दिया, सारे यज्ञ की जो विस्तार जो है उसको इतना बदला दिया जो आज तक भी हम उस बात को याद करते हैं। और उसके बाद सारे जोन में हिम्मत आई और उन सब ने किया, सारे भारतवर्ष में 1,00,000,00,00,00,00 का सभा होता गया। तो ये सब दादी की संकल्प की शक्ति थी। तो इसीलिए विश्वास रखिए, समय वो चल रहा है, भगवान ने वरदान दे चुका है कि आप संकल्प करो और वो हो जाएगा। परंतु पहला संकल्प ये करना है, जैसे हमारे दादियां अमृत वेला कभी मिस नहीं करते हैं, मुरली केवल सुनना सुनाना नहीं, सारे दिन में भी मुरलियों का मथन करते हैं। जो ट्रैफिक कंट्रोल है स्वयं अभ्यास करते हैं। शाम का जो समय आप बाबा ने जो कहा, वो समय को भी अभी 6:30 से 7:30 बजे तक शाम को कैसा भी अपना समय निकालकर दादियां भी अभ्यास कर रहे हैं। तो हम मधुबन निवासी भी इस समय पर हम लोग पूरा ये जो अमृत वेला और नमा शाम का ये भी पक्का कर लिया है, हम लोगों को करना ही है, कुछ भी हो करना है। और मुझे वो दिन सामने आ रहा है तो सारे विश्व भी हमारी दादियों का दर्शन करने की इच्छा रखेंगे कि शाम का 7:30 होवे और दादियां हमको वरदान देवे। वो दृश्य मुझे दिख रहा है कि हर रोज सारा विश्व देखेगा ये। तो हम बच्चों को भी हमारा संकल्प की सिद्धि होना है तो हम बच्चों को भी एक ही पावर है उसके लिए। जैसे हम हजारों बल्ब लगा दें और बिजली नहीं हो तो बल्ब का कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह से हम चाहते हैं हम एक संकल्प, शुद्ध संकल्प, अच्छे से अच्छा संकल्प किसी के प्रित, अपने प्रित करें और हो जाए, तो उसके लिए भी एक शक्ति चाहिए। वो शक्ति बाबा तो देता है, पर लेने की विधि क्या? लेने की विधि है पावर ऑफ साइलेंस। जब तक हम अपने आप को शांति में रखने की अभ्यास नहीं करते हैं, टेलीफोन रखा हुआ है तो कोई कर सकता है, हम ही बात कर रहे हैं, हम ही संकल्प चलाते जा रहे हैं, तो भगवान भी हमको कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए पहले तो अपने को अपने संकल्पों से भी थोड़ा सा उपराम उठना है। ऐसा नहीं हम संकल्प नहीं करते हैं, कर रहे हैं, पर कौन सा बाबा? मेरा बाबा, मैं आपके पास आया, ये संकल्प जरूर है। डायलिंग चाहिए फोन को, हमारी जीरो डायल है, हम जीरो है, हम जीरो से मिल रहे हैं, तो हम बाबा के साथ का संकल्प शुरू करते हैं। उसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं साइलेंस। साइलेंस बाहर की नहीं, आप कहां बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं। हम जहां है वहां से अपने को दूर ले जाते हैं, अपने आप को बाबा के साथ रहने की अभ्यास करते हैं, उसको हम कहते हैं साइलेंस। जब बाबा हमारे साथ है तो बाबा की शक्ति हमारे साथ है, स्वयं सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, जो संकल्प उस समय पर जो हम करते हैं वो आपका हो जाता है। उस संकल्प का भी थोड़ा सा हमको उस पर यही विचार करना है। एक है फेथ, हाँ मैं जो संकल्प करूंगा वो होगा ही, इसको कहते हैं हम संकल्प की दृढ़ता। जब तक फेथ और दृढ़ता नहीं होता है तब तक संकल्प सिद्धि नहीं होता है। फेथ कौन सा? बाबा हमारे साथ है और ये होना ही है, होगा। तो ये फेथ से, विश्वास से और दृढ़ता से हम संकल्प करते हैं तो होता है, होगा या नहीं फिर नहीं होगा। विश्वास और दृढ़ता से हम कोई भी संकल्प सोचते हैं तो तब बाबा हमारे साथ है, और उस समय पर दूसरी कोई भी संकल्प नहीं है तो इसीलिए वो पावरफुल हो जाता है। उसको हम कहते हैं सिर्फ शांति नहीं, शांति की शक्ति कहते हैं उसको। हम और कोई विचार न रख के केवल बाबा और हम रहते हैं तो वो शांति है, और उसके साथ जो बाबा से हम लोग लेते हैं वो शक्ति है। उस शक्ति से हम जो भी दृढ़ता विश्वास से करते हैं वो कार्य सिद्धि होता है, और ये हमारी ट्रायल भी है, परीक्षा भी है, सफलता भी है। परंतु हम सबका इस समय पर एक ही संकल्प है और एक ही आशा है, बाकी सब आशाएं उसमें सम्मिलित है। आप कहेंगे वो कौन सी आशा है? हम सबकी एकमात्र आशा है, वो है मेरा बाबा इस सृष्टि पर आ जाए और वो दूसरों को नहीं मालूम पड़े, और हमको मिलते हुए भी, हम अनुभव करते हुए भी हम दूसरों को नहीं बताए, नहीं अनुभव कराए, तो वो दोष हमारे रह जाता है। बाबा ने स्पष्ट कहा है मेरी प्रत्यक्षता मेरे बच्चों द्वारा होगा, ये स्पष्ट बाबा ने बोल दिया है। देखो आज बाबा से मिलने के लिए भी एक रथ को बाबा ने तैयार किया ना, तो जैसे ही गुलजार दादी को देखते हैं तो बाबा आते ही हमको मालूम होता है बाबा आ गया, बाबा आ गया। तो उससे पहले जब गेट के पास आते हैं, गुलजार दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई बोलते हैं। पर जब जैसे ही बाबा की प्रवेशता होती है तो हम सबका मन बदल जाता है कि भाई नहीं, बाबा आ गया। तो इसी प्रकार इस बार आप यहां से जाएंगे, आप अकेले नहीं, आप भगवान को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत बार कह चुके हैं भगवान आ चुके हैं, आ चुके हैं, आ चुके हैं। तो अभी आप ये नहीं कहेंगे कि आबू जाइए वहां जाके बाबा से मिलके आइए, वो नहीं कहेंगे कि हाँ बाबा बैठिए, बाबा भगवान आ चुका है। तो उस समय पर आपकी दृढ़ता, विश्वास, बाबा इस आत्मा को अभी अनुभव कराओ, तो उसके लिए बाबा ने दो कंडीशन दिया है। एक कंडीशन शांति की शक्ति, बाबा हमारे साथ है, शक्ति वो चाहिए, है हमारे साथ है, स्वयं भगवान हमारे साथ है, शिव बाबा हमारे साथ है, मेरा बाबा हमारे साथ है। दूसरा कंडीशन कौन सा है? बाबा ने दो बात बताई थी, एक है संकल्प शक्ति, दूसरा आपकी वृत्ति। वृत्ति उसको कहा जाता है आपका चेहरा, आपका नयन। बोल के लिए बाबा ने थोड़ा लिमिट कर दिया है, अभी ज्ञान देख के किसी को अनुभव नहीं कराना है, परंतु आपकी चेहरे, आपकी नयन और आपकी चलन, बैठना भी चलन है, चलना भी चलन है। तो बाबा ने कहा भगवान की प्रत्यक्षता हम बच्चों द्वारा ही होना है, तो हमको पहले शांति की शक्ति वो सुबह से शुरू करना पड़ता है उसको इकट्ठा करने के लिए। हम कितनी जितनी शांति में हम रहते हैं उतनी शांति की शक्ति हमारे अंदर बढ़ता जाता है। तो चेहरे में भी खुशी, चेहरे में भी वो चमक, दादियों को देखते ही लगता है देखो। तो वृत्ति उसको कहा जाता है जो आपका स्वरूप है। तो इस समय पर सेवा भी स्वरूप से करने का समय आ चुका है। हम लोग अभी भाषण से नहीं, बहुत अच्छे भाषण करते हैं, बहुत अच्छे भाषण करते हैं, हमारे शिवानी दीदी का तो बहुत नाम है ना, सभी को मालूम है ना, बहुत अच्छा। पर वो भी यही कहती है भगवान आ चुका है, तो ये नहीं कहे कि कहां, नहीं, भगवान आ चुका है। तो आपकी चेहरे से, आपकी नयनों से, आपकी वृत्ति से भगवान की प्रत्यक्षता करने की जवाबदारी अभी इस बार गुजरात वालों को बाबा ने दिया है। तो प्रत्यक्षता गुजरात वाले करके दिखाएंगे, ये आशा मुझे है, मेरे बाबा को भी है। ठीक है, अब भले हाथ ताली बजाओ। क्योंकि बाबा चाहते हैं कि कोई तो निमित्त बनो। सुनाने में तो हम सभी होशियार हैं, सेवा में तो हम सब होशियार हैं। तो आपको एक छोटा सा युक्ति मैं बता रहा हूं। देखो आज भी सबसे बड़ा मंदिर हमारे साउथ में है, तिरुपति कहते हैं। कभी भी आप जाओ वहां लाखों लोग और क्यू ही क्यू लगा हुआ है। इसका सीक्रेट आपको पता है क्यों? क्योंकि जो वहां मूर्ति है वो मूर्ति जिसने भी देखा है वो उसी स्वरूप में है, कभी वो स्वरूप बदला नहीं है, वही आनंदमय स्वरूप, वही दाता का स्वरूप में वो मूर्ति है और सभी वही देख के खुश हो रहे हैं। और बाबा ने ये भी बताया है कि ये भी स्वरूप जो है आप लोगों में ही कोई ब्राह्मण का ही है। और बाबा ने ये भी कहा है कि आपके घर के आसपास गलियों में शहर में जो मंदिर है वो भी हम बच्चों का ही है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क यही है कि वो मूर्ति जो हमारी वहां है, जो संपूर्ण मूर्ति, उसका एक ही पोज है, जो हंसता हुआ हस्त जो देते हुए दाता का स्वरूप का है, तो इसीलिए सब लोग वहां आते हैं, खुश होते हैं, देखते ही भगवान ने दे दिया। पर हम लोगों का सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा समय के अनुसार बदलता रहता है, परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। तो एक रस जो बाबा कहते हैं, एक स्वरूप जो होना है, तो वो भी हम बच्चों को थोड़ा सा इस पर ध्यान तो देना पड़ेगा। इसी में ही थोड़ा सा माया हमारी परीक्षा लेती रहती है। आज देखते हैं इसका कितना स्वरूप होता है। तो कभी कभी मुझे हमारे भाई बहने कहते हैं कि भाई तो हमारी मम्मा की भी तो अनेक रूप है ना, देवी सरस्वती भी है तो कभी काली भी है, कभी दुर्गा भी है, कभी ये है, तो मंदिर अलग अलग है, एक ही मंदिर में नहीं है वो। तो इसीलिए हम लोगों को भी ये डिसाइड करना है कि हमारा वो कौन सा स्वरूप है और उसी स्वरूप पे रहना पड़ेगा। उसको बदलेंगे तो फिर वो नहीं आएंगे। अम्बाजी के भगत और है, श्रीनाथ का भगत और है। तो इसीलिए हम बच्चों को भी बाप की प्रत्यक्षता करने से पहले हम बच्चों को अपनी स्वरूप का भी डिसाइड करना होगा। हर्षित मुक्ता वाला, सदा देवता बनकर दाता बनने वाले स्वरूप हमको करना है या अपना परिवर्तन करना है। तो इसीलिए हमारी जो वृत्ति है इस समय पर हम लोगों को थोड़ा सा उस पर भी ध्यान रखना होगा। और जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी जो तीन सब्जेक्ट जो बचा है उसमें ज्ञानी तो आत्मा बन गए, तपस्या भी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, बाकी जो गुणों का जो स्वरूप है, देवता वो है जो दैवी गुण संपन्न है। तो गुण से ही हमारी देवता स्वरूप फिक्स होता है। तो इसीलिए हम सबका इस समय पर जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गुणों पर है, जो दैवी गुण है, सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो देवताओं के लिए जो कहा जा रहा है, तो वो है हमारा अंतिम स्वरूप। तो इसीलिए और कुछ नहीं जाएगा। आपने कितनी सेवा किया वो भी नहीं पूछेंगे बाबा, तुम कितना ज्ञानी हो वो भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि सतयुग में ज्ञान भी नहीं, तपस्या तो देवता करने भी नहीं जानते। बाकी जो गुण यहां से जो हम ले जाते हैं वो गुण सतयुग में भी रहेगा और कल्प के अंत तक भी। कभी कभी हम ही कहते हैं अरे अज्ञान में भी देखो ये कितने अच्छे लोग हैं, तो माना गुण का ही है महत्व। तो क्यों नहीं हम जो बाकी अभी थोड़ा समय बचा हुआ है तो उसमें गुणवान बने, गुण का चोरी करें, चोरी भी करना हो तो गुण चोर बने। तो हरेक में हमको गुण ही नजर आए, जितने भी बाबा के बच्चे हैं भगवान के बच्चे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता उनमें गुण नहीं हो, गुण ही नजर आए और कुछ नहीं नजर आए। तो इस समय पर हम सबका लक्ष्य एक ही है कि आया कि आया सतयुग, तो जब तक हम गुणवान नहीं बने तो वहां देवता कहां से आएगा। तो इसीलिए हम लोगों को भी बाबा को ये आशा है मेरे बच्चों द्वारा प्रत्यक्षता भगवान की होगी, भगवान भी गुण स्वरूप है। तो वो गुण जब तक हम बच्चों में नहीं देखेंगे तो हम कितना भी लोगों को कहें उनको विश्वास नहीं आएगा। तो इसीलिए तो हम बच्चों को इस समय पर हमारे दिल में बाबा को रखना है, सदा बाबा के लिए प्रत्यक्षता की एकमात्र संकल्प रहे कि बाबा का गुण मेरे से दिखाई दे। गुण से ही भगवान की प्रत्यक्षता हो सकती है, बाकी कोई जादू नहीं है। आपका चेहरे पे खुशी, आपकी चेहरे की शांति, आपकी चेहरे की चमक जो है, आपकी चलन की जो रॉयल्टी जो है, तो वही भगवान की प्रत्यक्षता करा सकता है, वाचा से नहीं। ठीक है, मधुर भाषा करना पड़ता है, ठीक है, परंतु प्रत्यक्षता की मूल है वो है सद्गुण। और वो देवताएं यही है, और आपको भी नहीं देख रहा हूं मैं, आपकी देवता स्वरूप को देख रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है तो हम सभी आप यहां से जाएंगे तो बाबा हमारे साथ जाएंगे, साथ साथ हमारी जो दैवी गुण है, जो स्वरूप है, वो भी हम लोग अपना लेके जाएंगे, जिस द्वारा हम बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे। ओम शांति।